भागवत सार की श्रृंखला में दसवें स्कंद के सातवें अध्याय पर चर्चा है, जिसका शीर्षक है तृणावर्त का वध। इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे, आप सब दोहराइए। यहाँ है श्लोक। श्रीराजोवाच येन येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो। श्रीराजो वाच येन येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो। श्रीराजोवाच येन येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो। आप में से कोई दोहराइए।
श्रीराजोवाच येन येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो। श्रीराजोवाच येन येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो। श्रीराजो वाच राजा ने अर्थात सुखदेव गोस्वामी से पूछा, येन येन अवतारेण जिन जिन अवतारों के द्वारा प्रदर्शित लीलाएं भगवान भगवान हरि ही हरि ईश्वरः नियंता करोति प्रस्तुत करते हैं, कर्ण रम्याणि कानों को सुनने में सुखद, मनः मनः ज्ञानी मन के लिए आकर्षक, च भी न हम सबों के प्रभो हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की, तो इसमें श्लोक पहले और दूसरे दोनों का अनुवाद है। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने वाली है। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। सामान्यतया हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, अर्थात देर से आते हैं जब क्लास शुरू हो जाए, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती हैं। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति जो भव बंधन का मूल कारण है समाप्त हो जाती है। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं मैत्री बढ़ती है। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें। तात्पर्य, जैसा कि प्रेम विवर्त में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख हय भोगवांछ करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। हमारा भौतिक जगत माया है जिसमें हम तरह तरह के भौतिक भोगों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए हम तरह तरह के शरीर धारण करते रहते हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया असन्नपि क्लेशद आस देह। जब तक हमारी यह नश्वर देह रहेगी तब तक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक आधि भौतिक तथा आधि दैविक क्लेश मिलते रहते हैं। सारे कष्टों का मूल कारण यही है जिसे कृष्ण भावनामृत को जागृत करके ही दूर किया जा सकता है। इसलिए व्यासदेव तथा अन्य मुनियों द्वारा प्रस्तुत सारा वैदिक साहित्य हम में कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। यह श्रवणम कीर्तनम के जागरण से प्रारंभ होता है। श्रृण्वताम स्वकथः कृष्णः। श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथ केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए अवसर प्रदान करने के निमित्त हैं। कृष्ण के विभिन्न अवतार हैं, वे सभी अद्भुत हैं, अतएव वे हमारी उत्कंठा को जागृत करने वाले हैं। किंतु मत्स्य, कूर्म तथा वराह जैसे अवतार कृष्ण के समान आकर्षक नहीं हैं, क्योंकि सर्वप्रथम हमें कृष्ण के विषय में सुनने के लिए कोई आकर्षण नहीं होता, इसीलिए यह हमारे कष्टों की जड़ बन जाता है। किंतु परीक्षित महाराज विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाएं जो माता यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित करने वाली थीं, विशेष रूप से आकर्षक हैं। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही पूतना, तृणावर्त तथा शकटासुर का वध किया और अपने मुख के भीतर समूचा ब्रह्मांड दिखलाया। इस तरह एक एक करके कृष्ण की लीलाएं माता यशोदा तथा समस्त ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्यचकित करती रहीं। कृष्ण भावनामृत को जगाने की विधि है आदौ श्रद्धा तथा साधु संगह। कृष्ण की लीलाएं भक्तों से उचित रूप से सुनी जा सकती हैं। यदि वैष्णवों से कृष्ण लीलाओं के विषय में श्रवण करके थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जा सके तो वैष्णवों के प्रति अनुरक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में ही रुचि रखते हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज मनुष्यों के लिए संस्तुति करते हैं कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं को सुने, क्योंकि वे लीलाएं मत्स्य, कूर्म, वराह आदि अवतारों की लीलाओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक हैं। सुखदेव गोस्वामी से अधिकाधिक सुनने की इच्छा से महाराज परीक्षित ने उनसे अनुरोध किया कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं का आगे वर्णन करें, क्योंकि वे सुनने में सरल हैं तथा अधिकाधिक उत्सुकता जागृत करने वाली हैं। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भागवत सार में जैसे हम लोग चर्चा करने के पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराते हैं, तो आप सब साथ में इसको दोहराइए।
सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरौ मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते असाधु साधु तदायीन् अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णारित्कण्ठयो स्फुरा
हरे कृष्णा। तो ये सातवां अध्याय है तृणावर्त का वध। पहले तीन श्लोकों में परीक्षित महाराज के प्रश्न हैं, जैसे हमने अभी शुरुआत में दो श्लोक पढ़े, परीक्षित महाराज के प्रश्न हैं। और फिर चौथे श्लोक से सत्रहवें श्लोक तक वर्णन किया गया है कि कैसे उत्थान जो उस समय संस्कार होना था वो कैसे हुआ और किस प्रकार श्री कृष्ण ने शकटासुर का वध किया। फिर 18वें श्लोक से आगे 33वें श्लोक तक वर्णन है कि भगवान ने कैसे तृणावर्त का वध किया और उसके बाद कैसे अन्य लोग जो वहाँ सब उपस्थित थे उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। और अंतिम विभाग 3-4 श्लोक ये बताते हैं कि किस प्रकार एक समय यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखलाया या विराट रूप दिखलाया। तो ये इस अध्याय में, अर्थात कहना चाहिए इस एक अध्याय में, तीन लीलाओं का वर्णन है, शकटासुर का वध, तृणावर्त का वध और साथ ही साथ ब्रह्मांड विश्वरूप का दर्शन। तो इस प्रयास करेंगे आज के समय, आज ही में इसको पूरा समाप्त करने का। तो परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, कहना चाहिए प्रश्न के द्वारा वे अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं कि कैसे और इसीलिए अभी इस श्लोक के बाद वो कहते हैं कि और अन्य लीलाओं को, कृष्ण की बाल लीलाओं को आप बताइए। तो ये श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं यहाँ पर जो हम लोग सुन रहे हैं तो बहुत आनंद देने वाली हैं जीव को। तो अब श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को आगे सुखदेव गोस्वामी कहना प्रारंभ करते हैं कि किस तरह ये जो लीलाएं हैं, ये जो कथाएं हैं, ये आनंद देती हैं। आगे एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कृष्ण कथा के महत्व को लिखते हैं। वो कहते हैं कि जब भक्त को कृष्ण की कथा सुनने में रुचि बढ़ जाती है, वो अभ्यास कर लेता है कृष्ण कथा का, बारंबार उसको सुनने का, तो वो दिव्य स्तर पर स्थापित हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक कोई दिव्य स्तर पर नहीं है तब तक कृष्ण कथा में रुचि लेना संभव नहीं है। अर्थात जब तक हम दिव्य स्तर पर नहीं हैं कृष्ण कथा में रुचि नहीं ले सकते। और दूसरा फिर प्रभुपाद समझाते हैं इसका अर्थ क्या हुआ, जो भी कृष्ण कथा को सुन रहे हैं उसमें रुचि ले रहे हैं वो सब दिव्य स्तर पर है, तभी उनको रुचि आ रही है। तो देखिए बड़ा सरल है अपने आप को भौतिक स्तर से दिव्य स्तर पर उठाना। कृष्ण की कथाओं को श्रवण कीजिए, रुचि लीजिए उनमें। जब कृष्ण कथा हो तो आतुरता दिखलाइए, ऐसे मत दिखलाइए कि हाँ अब होना ही है, सुनना है, नियम है, बैठना है, जबरदस्ती है। आतुरता होनी चाहिए। आतुरता नहीं है कृष्ण कथा में तो ये अर्थ है कि हमारी भक्ति ठीक नहीं हो रही है, हमारा जो भक्ति का मार्ग का पालन हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। अगर हमें कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही तो बाकी बहुत बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, हम बहुत व्यस्त हैं सेवा में, सारा श्रम एव ही केवलम, व्यर्थ है वो, शास्त्र कहता है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने ये नियम बनाया कि हर रोज सुबह भागवत का श्रवण हो। तो ये इसलिए था ताकि हमारी रुचि बढ़े, इसीलिए नहीं था कि हम इसको एक बोझा समझें और जबरदस्ती आकर बैठें, या तो फिर ना आए और कारण दें कि हम इसमें व्यस्त हैं उसमें व्यस्त हैं। श्रम एव ही केवलम। तो यहां ये बहुत सुंदर कथा प्रारंभ होती है भगवान शकटासुर। तो जब परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने शकटासुर की कथा कहना शुरू किया। उन्होंने कहा भगवान 3 महीने के थे, अर्थात जब पूतना का वध किया तो बहुत छोटे थे, कुछ ही दिनों के थे, लेकिन अब शकटासुर का वध करने के लिए अब वो 3 महीने के थे। तो जब 3 महीने के हुए तो उस समय वर्णन है कि उनका उत्थान जो संस्कार होता है वो किया गया, अर्थात उत्थान मतलब जब बच्चा पलटता है अपने आप, करवट लेता है या एक तरफ होता है, और या बस अब वो घर के बाहर निकलता है पहली बार, तो उसको भी कहा जाता है निष्क्रमण संस्कार उसको कहते हैं। तो ऐसे ये इस समय यहाँ यशोदा माता कर रही हैं। हम लोग देखते हैं कि संस्कारों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। संस्कार क्यों करने चाहिए? वैसे तो 16 संस्कार दिए गए हैं जिनमें से 10 प्रमुख हैं, जैसे प्रारंभ जिनका होता है विवाह से, फिर विवाह के बाद गर्भाधान संस्कार इत्यादि बहुत से संस्कार हैं, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो ये संस्कारों का क्या महत्व है? संस्कारों का पहला महत्व है कि संस्कार का शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कार मतलब एकदम सही कृति, पूर्ण कृति या पूर्ण कार्य, ये संस्कार कहलाते हैं। और संस्कारों का लाभ क्या होता है? पहला लाभ है ये बुरे कर्मों को दूर कर सकते हैं संस्कार। तो बच्चे में जब संस्कार दिए जाते हैं, संस्कार किए जाते हैं, तो ये बुरे कर्म को दूर कर सकते हैं। जैसे जब गर्भाधान संस्कार किया जाता है तो उसके द्वारा एक शुद्ध आत्मा को आकृष्ट किया जाता है मां के गर्भ में। तो संस्कार पहला चीज कि बुरे कर्मों को दूर कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई बुरी या शैतानी ताकतें हैं या प्रभाव है उनको भी वो दूर कर देते हैं, एनी ईविल इन्फ्लुएंस, तो उसको भी संस्कार दूर कर देते हैं। साथ ही साथ वे शुभ या मंगलमय वातावरण को बढ़ाते हैं, शुभ या मंगलमय वातावरण की वृद्धि करते हैं ये संस्कार। और अंततः ये संस्कार साधुओं की, देवताओं की और भगवान के आशीर्वाद को आकृष्ट करते हैं। तो इसीलिए संस्कार जीवन में महत्वपूर्ण है। अन्य कई कारण हैं संस्कारों के। तो इसीलिए संस्कार ये वैदिक सभ्यता में बड़े महत्वपूर्ण माने जाते थे। तो यशोदा मैया उस संस्कार को कर रही हैं, ब्राह्मणों को बुलाया, बड़ा उनका आदर सत्कार किया, उन्होंने उन्हें दान दिया, अन्न दान दिया, भोजन कराया, और बहुत अच्छे अच्छे खाने के वस्तुएं दी। फिर ब्राह्मणों ने उसे पहले प्रक्रियाएं भी की, यज्ञ आदि किए ब्राह्मणों ने। तो जब ये सब चल रहा था तो कृष्ण को नींद आने लगी। हम जब ये पढ़ रहे थे तो हम सोच रहे थे कि कृष्ण भी सोच रहे होंगे, इतने सारे उच्चारण करने की क्या जरूरत है, ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर रहे, अग्नि हो रही है, मुझे नींद आ रही है। कृष्ण सो गए, नींद आने लगी। तो यशोदा ने देखा कि बच्चे को नींद आ रही है, तो फिर वो उसके साथ, बच्चे के साथ लेट गई सुलाने के लिए। जैसे माता लेटती है तब बच्चा सोता है, तो वो लेट गई और बच्चे को सुलाने लगी। तो देखा जब उन्होंने ठीक से पूरी तरह सो गया है, तो उनको और भी कार्य थे, तो उन्होंने बच्चे को एक गाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी जो होती है तो उसको गाड़ी खड़ी थी, छकड़ा कहते हैं उसको या शकट भी कहते हैं उसको, तो उसके नीचे रख दिया कृष्ण को और फिर अपने काम के लिए चली गई। नीचे इसलिए लग दिया, धूप वूप ना लगे, बस नीचे पड़ा रहे। तो देखिए कितना सरल जीवन था। यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि माता को अपनी संतान को पूरा समय देना चाहिए, तब संतान के हृदय में माता पिता के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। आजकल माताओं ने समय देना बंद कर दिया, जब संतान उत्पन्न होती है फिर जल्दी से माता को ऑफिस जाना है, इसीलिए वो बच्चे को कहीं पर छोड़कर चले जाते हैं दिन भर। तो दिन भर बच्चा किसी और के साथ रहता है, शाम को आते हैं उसको लेकर आते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं कि माँ को पूरा समय देना चाहिए बच्चे को। तो जब बच्चे को माँ समय देती है, बच्चा वो त्याग वो चीज़ें देखता है, तो स्वाभाविक है बच्चे के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है माँ के प्रति। और ये वैदिक सभ्यता थी, माताएं पूरा समय, इस समय भी देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं सेरेमनी चल रही है, सारे ब्राह्मण आए हुए हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि मेरा बच्चा सोना चाहता है तो तुरंत जाकर उनके साथ लेट गई सुलाने के लिए। तो ये माता का कर्तव्य है। तो आधुनिक समय में माताओं ने इसको महत्व देना कम कर दिया और उसके कारण बच्चों में माता पिता के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता। तो अब जब ऐसे वो सो गए, नीचे सुला दिया और फिर वो अन्य काम कार्यों में व्यस्त हो गई। तो थोड़े समय बाद कृष्ण की आंख खुली और उन्हें भूख लगी, दूध पीना था उन्हें, तो देखा कि माँ नहीं है तो क्रोध आ गया। हम लोग देखते हैं कि बाल लीला में कृष्ण को कई जगह पर क्रोध आएगा, बड़ा गुस्सा करते हैं क्रोध। तो क्या हम लोग तो कहते हैं कि भक्तों को क्रोध नहीं करना चाहिए, मुक्त अवस्था में क्रोध नहीं होता, और जो मुक्ति प्रदाता हैं वो खुद ही क्रोध कर रहे हैं। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। तो मुक्ति प्रदाता जो खुद हैं वही क्रोध कर रहे हैं, तो ये कैसे है? तो क्रोध यहां लीला के आनंद को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण करते हैं। तो अब क्रोध कर दिया और क्रोध में देखते हैं जब छोटा बच्चा होता है तो क्रोध, छोटा से है लेटे हुए तो अपने पांव जो है वो हवा में हिलाने लगता है बच्चा। तो श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही किया, लेटे हुए थे गाड़ी के नीचे। वर्णन ऐसे है कि वो तो गाड़ी के नीचे थे, गाड़ी बहुत ऊपर थी, ऐसा नहीं था कि उनके पांव को स्पर्श कर रही थी गाड़ी, इतने नीचे होती तो क्यों रखती यशोदा। तो गाड़ी आपने देखी है, बैलगाड़ी काफी ऊंची होती है, तो बच्चा तो छोटा सा होता, वो नीचे था और बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, बहुत भरा हुआ था वो, तो इसलिए नीचे लिटा दिया। एक और चीज हम लोग देखते हैं कि देखिए कृष्ण को कैसा सरल जीवन पसंद है। माता ने नीचे जमीन पर रख दिया, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ऐश्वर्यशाली उनके लिए बिस्तर बना होगा, उस पर जाके रखेंगे चामर हिला, कुछ नहीं, नीचे रख दिया, बस पड़े रहो यहीं पर। और कृष्ण भी पड़े हुए हैं, ये प्रेम है। तो फिर उन्होंने ऐसे बस हवा में पैर हिलाए और धड़ाम करके सारी जो गाड़ी थी, छकड़ा पूरा, वो टूट कर गिरा। सुखदेव गोस्वामी कहते उसके पहिए कहीं पर जाकर गिरे, उसके जो एक्सल जिससे जुड़ा होता वो कहीं जाकर गिरा, बर्तन इतने सारे इधर उधर गिर गए, बहुत भयंकर आवाज आई। तो सारे आश्चर्यचकित हो गए, क्या हुआ ये सब? तो दरअसल हुआ ये था कि उसमें वहां पर एक असुर आया था जिसका जिसको शकटासुर कहते हैं, शकट के रूप में वो आया, इसीलिए शकटासुर कहलाया। तो शकटासुर दरअसल इसका नाम था उत्कच, इस असुर का नाम था उत्कच, क्योंकि शकट के रूप में आया इसलिए शकटासुर कहलाया। कोई कहीं कहीं पर वर्णन है कि शकट के रूप में था, कोई कहते हैं कि हवा के रूप में था इत्यादि। तो शकट शकटासुर तो उत्कच था। दरअसल अपने पूर्व जन्म में ये उत्कच ये हिरण्याक्ष का पुत्र था, असुर हिरण्याक्ष का पुत्र। और एक समय ये जो उत्कच था ये लोमश ऋषि के पास पहुंचा, लोमश ऋषि के आश्रम में उनका अपमान किया, पेड़ों को उखाड़ कर फेंकने लगा इत्यादि अपने बल के अहंकार में। तो लोमश ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हें बड़ा अहंकार है अपने शरीर का, बड़ा बल का, तो जाओ तुम्हारा शरीर ही नहीं रहेगा। तो वो फिर ऐसे ही हो गए बिना शरीर के। तो उस समय उन्होंने क्षमा मांगी लोमश ऋषि से कि क्षमा चाहते हैं, ऐसे मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तो ऐसा हो गया, बहुत लंबे समय तक तुम ऐसे रहोगे, और फिर जब आगे चलकर श्री कृष्ण आएंगे लीला करने तो श्री भगवान के चरणों का स्पर्श तुम्हें प्राप्त होगा। देखिए, अगर कोई भक्त, कोई वैष्णव, कोई साधु दंड भी दे देते हैं, श्राप भी दे देते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। जैसे यहां पर श्राप दिया, लेकिन इतना बड़ा आशीर्वाद कि कृष्ण के चरण कमल प्राप्त होंगे। तो ऐसे ये शकटासुर आया था कृष्ण को मारने, लेकिन कृष्ण ने केवल अपने पांव को हवा में जरा सा हिलाकर, छोटे छोटे पांव को मार दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर इस श्लोक में जहां ये कहा गया कि कृष्ण ने पांव को हिला के मार दिया, बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए कृष्ण में और अवतारों में भेद। कृष्ण जब आते हैं तो कैसे मारते हैं असुरों को? केवल पांव हिलाकर, बस छोटे से पांव हिलाया, असुर मर गया, दूध पीते पीते मार दिया। लेकिन वामन देव जब आए तो उनको अपना बड़ा विशाल रूप लेना पड़ा, नरसिंह देव आए तो उनको भी बड़ा विशाल रूप लेकर मारना पड़ा। अन्य भी अवतारों में हम देखते हैं कि बड़ा मेहनत करना पड़ा। यहां कृष्ण बैठे बैठे लेटे लेटे बस असुरों को मार रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान है, ये प्रमाण है। तो ऐसे श्री कृष्ण ने इस शकटासुर का वध कर दिया, और वहां उपस्थित जितने लोग थे उन्होंने देखा, सब भाग कर आए। क्या हुआ? तो ये जो शकटासुर है, इसको जैसे गाड़ी के रूप में था तो सब गाड़ी इधर उधर गिरी, तो पूछने लगे इधर उधर, अरे कैसे हुआ, क्या हुआ? तो बच्चे खेल रहे थे वहां पर, तो बच्चों ने कहा कि दरअसल कृष्ण ने पांव लगा दिया इसीलिए ये टूट गई गाड़ी। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, छोटा सा बच्चा है, जरा सा, इतने से पांव हैं उसके, इतनी बड़ी गाड़ी कैसे हो सकता है? तो विश्वास नहीं किया। तो ऐसे श्री कृष्ण ने बड़ी आसानी से शकटासुर का वध कर दिया। शकटासुर हमारे भक्ति के जीवन में भी है। शकटासुर क्या प्रतिनिधित्व करता है? शकटासुर भार वहन करने की प्रवृत्ति का सूचक है। जैसे बहुत बड़ा भारी भरा हुआ था उसमें, तो भार वहन करने की प्रवृत्ति का सूचक है शकटासुर। क्यों? क्योंकि शकटासुर ऐसे आया तो कैसा भार होता है हमारे ऊपर, किस भार को हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भगवान का वर्णन करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण भाव ग्राही जनार्दन है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें ये कहा गया है कि मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभौ तो समम पुण्यम, भावग्राही जनार्दन। तो क्या कहा गया है कि अगर कोई मंत्र उच्चारण करते समय जैसे सारे मंत्रों को कहते हैं ओम कृष्णाय नमः इत्यादि, लेकिन विष्णु के लिए नहीं कहा जाता, तो कोई मूर्ख है वो कहेगा ओम विष्णाय नमः, लेकिन जो ज्ञानी है धीरो वदति विष्णवे, वो जानता है कि ओम विष्णवे नमः कहा जाता है। मगर वो कहते हैं कि दोनों को समान पुण्य मिल सकता है, क्यों? भावग्राही जनार्दन, अगर भाव सही है। कृष्ण ग्रामर नहीं देखते हैं, भाव देखते हैं, इसलिए कृष्ण को व्याकरण ग्राही जनार्दन नहीं कहा गया, भाव ग्राही जनार्दन कहा गया, तो वो भाव देखते हैं। तो कृष्ण है भावग्राही जनार्दन या भावग्राही, और अन्य जीव हमारे जैसे जो भगवान की भक्ति ठीक से नहीं करते वे भारवाही कहलाते हैं। हम लोग भावग्राही नहीं हैं, हम भारवाही हैं, भार को लेकर चलते हैं। कौन सा भार होता है हमारे ऊपर? पहला भार हमारे ऊपर होता है बुरी आदतों का, हम इसको लेकर चलते हैं। बहुत सी बुरी आदतों का भार है हमारे ऊपर जो हमारी भक्ति में बाधा आती है। भार मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता है, तो नदी पार कर रहा है और उसने पीठ पर बहुत सारा भार रखा हुआ है, तो वो कैसे नदी पार करेगा? डूब जाएगा। हम लोग भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम इस भौतिक भव सागर को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर पीठ पर भार है तो डूब जाएंगे। तो कौन सा भार है अर्थात कौन सी बाधाएं भक्ति में? बुरी आदतों का भार। हम सब पूर्व जन्म से या पूर्व भक्ति में आने के पूर्व में जो हमारी आदतें होती हैं उनको लेकर आते हैं और भक्ति में भी उनको बनाए रखते हैं, जो बाधाएं बन जाती हैं। जैसे एक बड़ी सरल आदत कि हमें कुछ भी समय पर करने की आदत नहीं है, बस ये आदत है और हम उसको बनाए रखते हैं भक्ति में, तो ना भगवान का दर्शन सही समय पर खुले, ना भगवान को भोग सही समय पर लगे, आदत है, तो ये भक्ति में बाधा है, ना हम कथा में आए समय पर, तो ये बुरी आदतों का भार हमारे सर पर है। बनाए, और कई आदतें ऐसी होती हैं जो भक्ति में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। निंदा करने की आदत होती है व्यक्ति को, निंदा कर देते हैं, या अन्य बहुत सारी आदतें, तो आदतों का भार हम लेकर चलते हैं। दूसरा भार हमारे ऊपर होता है तथा कथित कर्तव्यों का भार इस जगत के। हम बहुत सारे कर्तव्यों को अपने ऊपर ले लेते हैं, ये मेरा कर्तव्य है, वो मेरा कर्तव्य है, लेकिन असली कर्तव्य कृष्ण की सेवा, उसको भूल जाते हैं, इसीलिए अन्य सारे कर्तव्य भार बन जाते हैं। तो कर्तव्यों का भार हम लोग लेकर चलते हैं। कभी कभी भौतिक ज्ञान और ऐश्वर्य भी हमारे लिए भार बन जाते हैं। ऐसा समझाया गया है कि वो सर जो भगवान के सामने ना झुके शरीर पर केवल भार है, वो हाथ जो भगवान की सेवा में ना लगे शरीर के केवल भार हैं, वो मुकुट किसी राजा के सिर पर, कोई मुकुट ऐसा मुकुट जो भक्तों की चरण धूलि को ना ले अर्थात उनके सामने ना झुके, केवल एक भार है सर पर। और प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ये भगवत विहीन भौतिक ज्ञान की प्रगति अर्थात भौतिक ज्ञान की बड़ी प्रगति हो रही है, लेकिन ये भगवत विहीन भौतिक ज्ञान सारे मानव समाज पर एक भार है, क्योंकि भगवान की भक्ति या भगवत ज्ञान उसमें नहीं है और इसीलिए भार बन रहा है। तो इसको हमें समझना चाहिए कि हमें इन भारों को त्यागना है। ये जीवन भार लेने के लिए नहीं बना है। जैसे एक कथा बताई जाती है, एक बड़ी बूढ़ी स्त्री, वो वन से जा रही है, उसने बहुत सारी लकड़ियों को अपने सर पर रखा है, बांध कर रख कर लेके जा रही है, जाते जाते अचानक उसके सर से वो गिर जाता है, संभाल नहीं पाती, और अब बूढ़ी है, अब कहाँ सारी लकड़ियां फिर से उठाए, रोने लगती है, पुकारती है भगवान को, भगवान कुछ कीजिए, भगवान रक्षा कीजिए, भगवान आइए। भगवान आ जाते हैं, बताओ क्या बात है, तो क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? तो उसने कहा कि ये सब लकड़ियों को जरा उठा के मेरे सर पर फिर से रख दीजिए। हम लोग भी ऐसे ही हैं, भक्ति में आए हैं, भगवान के निकट आए हैं, और क्या कह रहे हैं भगवान को, बस ये लकड़ियां उठाकर रख दीजिए। भगवान सामने थे, वो जो चाहे मांग सकती थी, भगवान से मुक्ति मांग सकती थी, प्रेम मांग सकती थी, गोलोक में वास मांग सकती थी, उसने कहा भार को उठाकर रख दीजिए। तो ये हमारी स्थिति है, तो हमें भारवाही नहीं, तो भारवाही नहीं बनना है। और कृष्ण है भावग्राही, वो तो हम बन ही नहीं सकते, तो क्या बनना चाहिए? सारग्राही, भगवान के भक्त वैष्णव ये सारग्राही होते हैं, जो सार को ग्रहण करते हैं। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, उस सार को सारे वेदों से ग्रहण कर लेते हैं कि कृष्ण सार हैं। तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम भारवाही ना बने। कृष्ण को नहीं बोलेंगे उठाकर लकड़ियां फिर से हमारे सर पर रख दो, हम सारग्राही बने, और ऐसे सारग्राही बने जिसके द्वारा सारे वेदों के सार को हम समझ सकें। तो ये इस शकटासुर लीला का महत्व है कि हम अपने ऊपर जो भार को लेकर चल रहे हैं उसको त्याग दें। तो कैसे ये हो सकता है? हम शकटासुर का वध कैसे कर सकते हैं जो हमारे हृदय में बैठा है? सबसे पहली चीज, हमें अपने कर्तव्यों को इस भाव में करना चाहिए कि हमें केवल कर्तव्य करना है, फल भगवान जाने। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। भगवान पर कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन अपने कर्म अपने कर्तव्य बड़ी गंभीरता से कीजिए। दूसरी चीज, शास्त्र का ज्ञान प्रामाणिक स्थान से ग्रहण कीजिए, और कृष्ण को अपना रक्षक और कृष्ण को अपना पालक मानिए। तब हम ये सारे भारों से परे चले जाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हम जानेंगे कि हमारा कर्तव्य अच्छा करना है, लेकिन संभालने वाले, रक्षा करने वाले भगवान हैं। तो हमारे मन से ये भार नहीं रहेगा, सार हो जाएगा। तो शकटासुर की लीला हमें भार से सार की ओर जाने का मार्ग देती है। तो ऐसे हमें ये करना चाहिए। तो जब ऐसा हो गया, शकटासुर का वध हो गया, और सभी लोग इधर उधर देख भी रहे थे, बच्चों ने भी बताया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो फिर नंद महाराज ने और अन्य लोगों ने, सब ने मिलकर उसको फिर से गाड़ी में जो बर्तन वक्तन थे सब ठीक से किया, और फिर यज्ञ हुआ। उन्होंने यज्ञ करवाया फिर से कि ताकि जितने भी, उन्होंने उस समय फिर गायों को दान दी, क्योंकि उनको लगा कि कोई बुरा प्रभाव मेरे बच्चे पर हो रहा है, इसलिए गायें दान दी, यज्ञ करवाया ताकि वो सब दूर हो जाए। तो ऐसे शकटासुर वध की लीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि एक दिन यशोदा मैया कृष्ण को अपने गोद में लेकर बैठी थी, जब कृष्ण प्रायः एक वर्ष के थे। तो देखिए, हम लोग जो लीलाएं सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रोज हो रही हैं जो ये लीलाएं हैं। तो हमने देखा कि बहुत थोड़े से थे, कुछ ही दिन के थे, पूतना का वध किया, 3 महीने थे शकटासुर, 1 साल के हो गए तब तृणावर्त। तो बीच में क्या हुआ? क्या बीच में कंस किसी को नहीं भेज रहा था? कंस चुपचाप बैठता था, फिर उसको याद आता था 3 महीने 4 महीने बाद कि चलो फिर से मारें कृष्ण को? नहीं, कृष्ण तो भेजता होगा, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, मतलब इतने शक्तिशाली नहीं रहे होंगे, या कहना चाहिए कि टॉप आतंकवादी नहीं थे वो लोग, इसीलिए उनका वर्णन नहीं आता। जैसे अभी भी समाज में बहुत सारे आतंकवादी हैं, लेकिन वर्णन किसका आता है? टॉप लीडर्स का, ये आतंकवादी बड़ा है, वो आतंकवादी। केवल कुछ बड़े बड़े आतंकवादियों का ही वर्णन कर रहे हैं, सबका नहीं कर पा रहे हैं। इतने सारे असुर भेजता होगा कंस। तो 1 वर्ष हो गया था, तो एक समय माता लेकर बैठी थी गोद में, और अचानक गोद में खिला रही थी यशोदा। बहुत सुंदर वर्णन है कि किस तरह यशोदा उनको खिला रही थी, कृष्ण के मुख को स्पर्श कर रही थी, ऐसे खिला रही थी, तो अचानक वो बहुत भारी हो गए। ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मांड से ज्यादा भारी हो गए। यशोदा से उठाया नहीं जा रहा था, उसने कहा ये क्या हो गया, इतने भारी कैसे हो गए। तो यशोदा ने नीचे रख दिया, कुछ थोड़े बहुत ब्राह्मणों को कहा मंत्रों का उच्चारण करें, और फिर वो अपने कार्य में लग गई। तो जब कृष्ण भारी हुए, नीचे रख दिया ब्रह्मांड से भारी, उसी समय एक असुर आया तृणावत। इसने बवंडर का रूप लिया था ऐसे, तो पूरा उस समय ब्रज में आया वहां पर गोकुल में, और बड़ी तेजी से वहां पर फैलने लगा, और सभी की आंखें बंद हो गईं, धूल धूल सब जगह हो गई, आंधी आने लगी, तूफान आने लगा, सब देख रहे हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें वो आया और कृष्ण को बड़ी आसानी से उठाकर ले गया। तो ऐसा कैसे हुआ, अभी तो यशोदा माता गोद में नहीं उठा पा रही थी, इतने भारी हो गए ब्रह्मांड की तरह, और अब ये कैसे उठाकर ले गया। तो कृष्ण हल्के हो गए। एक ये जो जितने असुर आ रहे थे, इनके अंदर बड़ी बड़ी योगी शक्तियां थी। जब हम लोग योग सिद्धि को प्राप्त करते हैं, योग का पालन करते हैं, तो कुछ सिद्धियां मिलती हैं, जैसे अणिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि। तो महिमा सिद्धि है कि बड़ा भारी हो जाना। तो ये जो असुर था, ये उठाकर ले गया कृष्ण को, तो कृष्ण उसके ऊपर है, कृष्ण से ज्यादा भारी है वो। और जब ऊपर चला गया, तब फिर बहुत ऊपर गया, कहते 800 मील ऊपर चला गया था, चलता गया था। भगवान ने भी जाने दो, थोड़ा ऊपर घूमने की इच्छा थी भगवान को, और बहुत देर तक घूम रहे थे, ऐसा नहीं गया और 5 मिनट में वापस आ गया। भगवान करते घूमता रहे, थोड़ा देर इच्छा हो रही थी भगवान की भी ऊपर भ्रमण करें, प्लेन में घूमें, तो कितना बढ़िया प्लेन होगा। वो तृणावत घुमा रहा था कि भगवान को शुद्ध हवा भी मिल रही थी, ऐसा नहीं था कि पूरा बंद कर दिया था पैक, एयरोस्टेस आकर बोल रही थी ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, भगवान स्वतंत्र है। तो ऊपर ऐसे घूम रहे हैं, और फिर काफी समय तक घूमने के बाद, बहुत लंबे समय तक वो घूमे, और फिर कृष्ण ने कहा ठीक है अब बहुत हो गए। जब प्रसन्न हो गए कि बहुत घूम लिया, तो कृष्ण ने महिमा सिद्धि का प्रदर्शन करना शुरू किया, मतलब वो खुद भारी हो गए, इतने भारी कि अब वो उठा नहीं पा रहा है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वो फेंकना चाहता था कृष्ण को, भारी हो गए तो इसको फेंके, लेकिन कृष्ण अपने छोटे हाथों से पकड़ा हुआ था उसके गले को, और फिर भगवान ने उसको दबाया और वहीं पर मार दिया। तो उस कहते हैं कि उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वो फिर गिर पड़ा भूमि पर धड़ाम करके। तो ऐसे ये असुर को भी भगवान ने मार दिया, तृणावर्त को। तो ये तृणावर्त जो अपनी सिद्धियों को प्रकट कर रहा था, दरअसल ये पूर्व काल में एक राजा था, अपने पूर्व जन्म में ये पांडु देश का एक राजा था। ये सारी कथाएं गर्ग संहिता में आती हैं और ब्रह्मवैवर्त पुराण में। तो ये पूर्व काल में अपने एक राजा था पांडु देश का, बड़ा प्रतापी राजा था, धार्मिक राजा था, लेकिन एक समय ये अपनी पत्नियों के साथ आनंद ले रहा था और दुर्वासा मुनि वहां पर आए और उसने ध्यान नहीं दिया, तो उसमें दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया इसको, असुर हो जाओ। तो हम लोग देखते हैं कि छोटी सी बात है, कोई आए सम्मान नहीं दिया तो क्यों श्राप दे दिया। पहला कारण, क्योंकि ये राजा है और राजा का कर्तव्य है कि ऐसा आचरण करना जिसको प्रजा पालन कर सके। यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तदेवे तरो जना, अगर श्राप नहीं देते तो उनकी प्रजा भी वही पालन करती, किसी वैष्णव का किसी साधु का सम्मान नहीं करती, तो इसीलिए उन्होंने उसको श्राप दे दिया। दूसरा, वो चाहते थे कृपा करना, तो जब श्राप दिया, क्षमा मांगी, तो अब कहा कि ठीक है कृष्ण प्राप्ति होगी। तो ऐसे ये असुर बना तृणावर्त, और यहां पर वो आया। तो तृणावर्त क्या प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा अनर्थ हमारे हृदय में है? तृणावर्त हमारे हृदय में झूठे मिथ्या अहंकार को प्रदर्शित करता है, ऐसा अहंकार जो कुछ भौतिक ज्ञान से या भौतिक ऐश्वर्य से आ जाता है, उसको प्रकट करता है। तो भौतिक ज्ञान और भौतिक ऐश्वर्य से जो अहंकार प्रकट होता है वो तृणावर्त है। क्यों? ऊपर 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 बढ़ता जाता है, हम लोग ये देखते हैं कि इसके द्वारा क्या होता है, जब अहंकार होता है एक दूसरे में भक्तों में, तो आपस में वाद विवाद होता है बहुत ज्यादा, और ये वाद विवाद भक्ति को रोक देता है, भक्ति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हम लोग रामायण में भी देखते हैं ऐसा ही प्रसंग आता है, जहां हनुमान जी जब लंका जाने के लिए समुद्र पार करना प्रारंभ करते हैं तो उनको एक राक्षसी का सामना करना पड़ता है जिसका नाम था सुरसा। तो सुरसा ने जब हनुमान जी आए तो अपना मुंह खोल लिया कि आपको मेरे मुंह के अंदर जाए बिना आप आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा अभी समय नहीं है, सेवा में हूं, अभी बाद में बात करेंगे, आता हूं मैं वापस, फिर आऊंगा आपके मुंह में। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, जा ही नहीं सकते। तो बहुत बड़ा मुंह था, हनुमान जी भी बड़े हो गए, सुरसा ने और बड़ा मुंह कर लिया, हनुमान जी और बड़े हो गए, सुरसा ने उनसे बड़ा मुंह कर लिया, हनुमान जी उससे बड़े हो गए। ऐसा वर्णन है कि समुद्र से लेकर आकाश तक उसका मुंह था और हनुमान जी भी उतने बड़े हो गए। और फिर अचानक हनुमान जी बड़े से छोटे से हो गए, और जब तक वो मुंह बंद करे उसके मुंह में अंदर जाकर बाहर आ गए। उन्होंने कहा ठीक है, टाटा हरि बोल, हो गया। तो वहां भी हम लोग देखते हैं, उसको आचार्य ने समझाया है कि ये दो भक्तों के बीच का अहंकार है कि वो भी बड़ा है मैं भी बड़ा हूं, वो भी बड़ा है मैं भी बड़ा हूं, श्रेष्ठ मानना अपने आप को। तो ये तृणावर्त है। तो अगर हम लोग इसी तरह आपस में मिथ्या अहंकार के आधार पर वाद विवाद करते रहेंगे तो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको नाश कैसे करना चाहिए, इस असुर को हम कैसे मार सकते हैं? इस असुर को हम मार सकते हैं तृणावर्त का वध किया जाता है तृणवत बनकर। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो तृणावर्त को मारना है तो तृणवत बनिए, घास के तिनके के समान बनिए, नम्रता को हृदय में लाइए। एक वैष्णव के लक्षण क्या है? एक वैष्णव का लक्षण है कि वो निस्वार्थ भावना में रहता है, निर्भय होता है और नम्र होता है। तो नम्रता ये वैष्णव का लक्षण है, इसलिए इस नम्रता को हमें लाना चाहिए हृदय में। तो नम्रता क्या है? ये नम्रता कैसे हम नम्र बन सकते हैं, और नम्रता है क्या? नम्रता का पहला अर्थ, नम्रता कोई बाहरी दिखावा नहीं है कि हम अब हाँ बड़े नम्र हो गए हैं, प्रभु जी दंडवत कर रहे हैं। नम्रता का पहला अर्थ है अपने हृदय में राधा और कृष्ण की माधुर्यता को स्थान देना, हमारे हृदय को इतना पत्थर नहीं बना देना जहां हम राधा और कृष्ण को ही नकार दें। तो राधा और कृष्ण की माधुर्यता को अपने हृदय में स्थान देना, ये पहला लक्षण है या ये पहला कार्य है नम्र होने के लिए। दूसरा, आचार्यों के द्वारा दी गई संपदा के महत्व को समझना। हमारे आचार्यों ने हमें बहुत बड़ी संपदा प्रदान की है, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, बहुत अमीर हैं, हम लोग बहुत धनवान हैं, आचार्यों ने इतना धन हमें दिया है संपदा के रूप में, उसके महत्व को समझिए। आचार्यों ने वो संपदा हमें दी है, जैसे कभी कभी पिता अपने पुत्र के लिए धन छोड़ जाता है, दादा अपने पोते के लिए धन छोड़ जाता है, उस धन से क्या होता है, भोग करता है, जगत में फंसता है। हमारे आचार्यों ने ऐसी संपदा छोड़ी है हमारे लिए कि अगर उसके महत्व को समझ जाएं, उसको जीवन में अपनाएं, तो कभी पुनः जीवन नहीं लेना पड़ेगा। ऐसी संपदा आचार्यों ने दी है। तो नम्रता है उनके महत्व को समझना। पहली नम्रता राधा कृष्ण की माधुर्यता को अपने हृदय में स्थान देना। दूसरा, आचार्यों के द्वारा जो संपदा हमारे लिए छोड़ी गई है उसको महत्व देना, समझना। तीसरा, शास्त्रों की पूजा करना। हम लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, शास्त्रों का पूजन करते हैं अध्ययन के द्वारा। शास्त्रों का पूजन करना सीखना, ये नम्रता है। और साथ ही साथ अन्यों की प्रगति देखकर प्रसन्न होना और अन्यों की विफलता पर दुख प्रकट करना, ये नम्रता है। तो ऐसे हमें तृणावर्त का अगर वध करना है तो तृणवत बनना होगा, नम्र बनना होगा। नम्रता, निर्भयता, निस्वार्थ भावना, ये वो लक्षण हैं जो वैष्णव को कृष्ण से प्रिय करते हैं। भक्ति होना ये तो वैष्णव में प्रमुख लक्षण है, लेकिन नम्रता, भक्ति के आधार पर नम्रता, निस्वार्थ भावना और निर्भयता भी अनिवार्य है। तो ऐसे तृणावर्त का हम वध कर सकते हैं। और फिर अंतिम विभाग इस अध्याय का है कि जहां जब जब ये वध हो गया तृणावर्त का, तो नंद महाराज और इत्यादि सारे जो थे बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा, नंद महाराज ने हमने पूर्व काल में बड़ी तपस्या की होगी, बहुत दान धर्म किया होगा, तभी हमारे बच्चे को कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि जब वो गिरा तृणावर्त, इतना बड़ा उसका शरीर था और कृष्ण उस पर आराम से खेल रहे थे, उसकी छाती पर आराम से, उनके लिए एक प्लेग्राउंड था वो। तो फिर उनको उठाया गया, लाए और जल्दी से मंत्रों का उच्चारण हुआ, यशोदा ने दूध पिलाना शुरू किया देखने के लिए कि बालक सही है कि नहीं, और फिर नंद महाराज ने ऐसा कहा। तो ऐसे और अंतिम विभाग में सुखदेव गोस्वामी एक छोटी सी लीला तीन श्लोकों में, चार श्लोकों में कह देते हैं कि एक बार यशोदा मैया बैठी हैं श्री कृष्ण को लेकर, खेल रही थी, जैसे बच्चे के साथ कभी कभी खेलते हैं तो उसके मुख पर उसके हाथ लगाते हैं, उसका मुंह खोलते हैं, बच्चा भी हंसता है, तो ऐसे खेल रही थी उसके साथ। और खेलते खेलते बात कर रही थी, अचानक कृष्ण को उबासी आ गई, तो कृष्ण ने उबासी ली जोर से, ऐसे जैसे आप लोग भागवत अब में लेते रहते हो, तो कृष्ण ने ऐसे उबासी ली, और जैसे ही उबासी ली मुंह खोला, यशोदा ने देखा अंदर सारा ब्रह्मांड, सारे ग्रह वहां पर उसको दिखाई दिए यशोदा को। यशोदा ऐसे मुख में नीचे देख रही हैं और उसको सारे ग्रह, सूर्य, चंद्रमा सब उसमें दिखाई दे रहे। यशोदा बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और फिर क्या किया यशोदा ने, कहने नहीं नहीं ये कुछ हो गया मेरे बच्चे को, फिर से वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस पर। तो यहां बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो अर्जुन क्या कर रहे थे, जय श्री श्री गौ नटराज दयाल निताय की जय। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो अर्जुन ने क्या किया, क्षमा मांगना शुरू किया, क्षमा मांग रहे थे। लेकिन जब यशोदा मैया ने देखा, उन्होंने कोई क्षमा नहीं मांगी, कृष्ण से ये नहीं कहा कि आप ही सब हैं परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, मुझे माफ कर दीजिए मैंने आपको अपना बच्चा कहा, ये कहा, जैसे अर्जुन कह रहा था हे यादव हे सखेती क्षमा कीजिए, बिल्कुल नहीं। यशोदा ने कहा बच्चा है इसको, ये सब कुछ कहीं से आ गया कुछ चीज। तो यहां ऐश्वर्य और माधुर्य इन दो में भेद देखते हैं। ऐश्वर्य जब होता है, ऐश्वर्य भाव में एक भक्त, तो वो भगवान को माधुर्यता की दृष्टि से नहीं देख पाता, और जहां माधुर्य में होता है वो ऐश्वर्य पर ध्यान नहीं देता। यशोदा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है ऐश्वर्य पर, इतना ऐश्वर्य दिखा दिया भगवान ने लेकिन यशोदा ने कोई ध्यान नहीं दिया, उनका ध्यान माधुर्यता पर है, कृष्ण मेरा बच्चा है बस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यशोदा देवकी से भी श्रेष्ठ मानी जाती हैं। वात्सल्य भाव के भक्तों में प्रमुख स्थान यशोदा का है, देवकी का बाद में आता है, और उसका कारण है कि माधुर्यता भरी हुई है, ऐश्वर्य लेश मात्र भी नहीं है यशोदा के हृदय में। तो ऐसे इस अध्याय को समाप्त करते हैं सुखदेव गोस्वामी, और फिर अगला अध्याय अब वो कहेंगे जिसमें भगवान यशोदा को अपने मुख में विश्वरूप दिखलाते हैं। अभी तो थोड़ा सा खाली एक बार दो बार दिखाया था, पहला आप दिखाया है, अब बहुत छोटे थे, अब थोड़ा आगे चलकर फिर से दिखलाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? बहुत सावधानी पूर्वक श्रवण कैसे करना चाहिए? थोड़ा घंटी थोड़ा सा प्रभु बहुत ज्यादा हो रहा है। सावधानी पूर्वक श्रवण कैसे करना चाहिए हमें? सावधानी पूर्वक श्रवण करने के लिए सबसे पहले जब हम श्रवण करने बैठे तो हमें ये सोचकर बैठना चाहिए कि मैं आज इस कक्षा से अपने जीवन के लिए किस उपयोगी चीज को लेकर जाऊंगा, वो मुझे चाहिए। कम से कम एक उपयोगी चीज मैं लेकर जाऊंगा। अर्थात जब हम सुनने बैठे हैं तो इसलिए नहीं बैठे हैं कि कोई डांटेगा, कोई समय पे आना है, नियम है। हम इसलिए बैठे हैं कि हम क्या लेकर जाएंगे इससे। आज मैं कथा सुन रहा हूं तो जीवन के लिए क्या लेकर जाएंगे, ये पहला चीज होना चाहिए। जब हम श्रवण करते हैं तो हमारा ध्यान अच्छा होगा, क्योंकि जब हमें कुछ अपने जीवन के लिए चाहिए तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। जैसे आज रोग फैला हुआ है और कई लोग आकर कहते हैं हम आपको बताते हैं आप इससे कैसे बच सकते हैं, सब लोग बड़े ध्यान से सुने, सब छोड़ देंगे, कृष्ण कथा छोड़ देंगे, ये गारंटी है। अभी भी इस समय समझ लीजिए अभी 8:30 से 8:30 कथा होती है, चल रहा है, और आपको 8 बजे कोई आकर कहे नीचे आइए हम आपको बताते कैसे बचना है, कृष्ण वृष्ण सब साइड में, आप पहले जाकर क्यों, जान बचानी है, क्या हो रहा है देखें। तो जब आपको महत्व पता है आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो इसीलिए पहली चीज कि हम ये जाने कि हम इससे जीवन में क्या सीख सकते हैं। दूसरा, कृष्ण कथा के महत्व को बारंबार सुने। जैसे आज प्रभुपाद ने समझाया तात्पर्य में कि कृष्ण कथा सुनने का अर्थ है रुचि बढ़ाने का, आप दिव्य स्तर पर हैं, तो बारंबार कृष्ण कथा के महत्व, कृष्ण कथा श्रवण के महत्व को सुने। जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई आपको कहें, अभी कोरोना के समय नहीं लेकिन वैसे कहें कि आप रात को 12 बजे मुझे शमशान के बाहर मिलना, 10 करोड़ रुपया देंगे, लोग तो आज भी चले जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है, मास्क लगाकर चले जाएंगे। हम लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? आपको 10 करोड़ रुपया मिल रहा है, खाली 12 बजे जाना है शमशान के बाहर लेने के लिए, जाओगे कि नहीं जाओगे? 10 बजे से खड़े रहोगे कि कहीं निकल नहीं जाए 12 बजे आकर, राइट? और वही आपको कहा जाए कि आओ 12 बजे बैठकर शमशान के बाहर जप करते हैं 2-2 माला, आप बोलोगे प्रभु जी आपका जप और आपकी माला आप ही रखो, हमारे लिए घर ही ठीक है। क्यों? महत्व नहीं पता कि हमारा जप करोड़ों रुपए से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए उसके महत्व को पता चल जाएगा। जैसे हमें आज धन के महत्व को पता है कि 10 करोड़ मिल गए तो बस जीवन सफल, तो हम भागेंगे उसके पीछे। ऐसे ही अगर हमें पता चल जाए कि कृष्ण कथा मिल गई तो जीवन सफल, हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। और तीसरी चीज, हमें शारीरिक तौर से भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम कथा से पहले ठीक से सो कर आए, ये नहीं सोचें कि कथा तो है ही सोने के लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है, तो हम कथा से पहले थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कर आए, मुंह इत्यादि धो कर आए, ये भी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि हम ऐसे ही आ जाएं और पता चले पूरा टाइम सो रहे हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं, हमने देखा कुछ भक्त तो बड़े योगी होते हैं कि पूरी कथा में सोते हैं, लेकिन जब अंत में पूछा जाता है कोई प्रश्न तो सबसे पहले हाथ उनका उठता है। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि पूरी कथा में सो रहे थे, क्वेश्चन कैसे पूछा, तो फिर याद आता है कि नहीं सूक्ष्म शरीर भी तो है, कोई बड़े महान योगी होंगे कि सूक्ष्म शरीर में कथा सुन रहे थे। तो अटेंटिव होने के लिए पहली चीज जैसे हमने बताई, हम बैठे हैं जीवन में क्या जीवन उपयोगी, आज हर रोज, ऐसे नहीं कि बस कोई महत्वपूर्ण श्लोक होगा, कोई सन्यासी आएंगे तब हम सुनेंगे। प्रभुपाद के तात्पर्यों से हम क्या ले सकते हैं? अगर हमें लगता है कि ये भक्त कोई बहुत ज्यादा वरिष्ठ नहीं है, इसकी कथा सुनने की जरूरत नहीं है, कम से कम प्रभुपाद के तात्पर्य से हम सुन सकते हैं। और फिर क्यों नहीं उस भक्त से सुने, वो भी तो वही बोल रहा है जो प्रभुपाद ने कहा, दोहरा रहा है अगर, तो सुनने में कोई गलती नहीं, चाहे कोई बहुत कनिष्ठ भक्त हो कोई वरिष्ठ भक्त हो। तो हर रोज हम ये बैठकर सुने कि आज मैं जीवन के लिए क्या ले जाऊंगा इससे। दूसरी चीज, महत्व को समझे, बार बार सुने उसके श्रवण के महत्व को। जैसे हमने बताया कि धन का महत्व रात को 12 बजे भी आप ले लोगे तो उसको सुने। तीसरा, शारीरिक तौर से भी अपने आप को, इसीलिए जो भक्त होते हैं वो साधारणतः रात्रि के समय बहुत अधिक भोजन नहीं करते। जो उनका रात का भोजन होता बहुत हल्का होता है, दूध या उसके साथ कुछ थोड़ा सा ले लेते हैं, जिसके कारण सुबह जप में कथा में उनकी रुचि बनी रहे। बहुत ज़्यादा खा लेने से फिर, क्योंकि इस खाने के बाद सो जाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता, तो फिर सुबह नींद आती रहती है। तो ऐसी भी चीज़ों को करना है। और जैसे हम भागवतम के पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन प्रार्थनाओं में हम क्या कह रहे हैं, भागवत का गुणगान कर रहे हैं। और अंतिम प्रार्थना में भागवत से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे अंदर, हमारे कंठ यो स्पुरा, हमारे कंठ में आकर स्थापित हो जाइए। ये प्रार्थना है ताकि अब हम भागवत को अच्छी तरह से समझ सकें। तो ऐसी कुछ प्रार्थनाएं भी हमें करनी चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? यस गिरिराज प्रभु।
हमारे पास समय होता है, हमें इस समय तो बहुत ही समय है, तो हम जैसे चैंटिंग कर लेते हैं 16 हो सकता है, 16+4 6 जैसे कर लेते हैं, तो ये बहुत सारे बचता है और हेडिंग भी करते हैं। लेकिन जैसे मेरा पर्सनल ऐसा अनुभव होता है कि मुझे ज़्यादा रुचि सुनने में और रीडिंग करने में होती है। मैं सोचता हूँ कि चैंटिंग हो गया तो सुनकर ज़्यादा अधिक से मतलब और टाइम यूटिलाइज करूँ, तो किस तरीके से इसको और क्या।
अगर आपकी रुचि सुनने में और पढ़ने में है तो आपको उसको ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस श्रवण और अध्ययन से आपकी जप में रुचि बढ़ जाएगी। श्रवण अध्ययन अब क्यों करते हैं? ताकि जप में रुचि बढ़े, भगवान के नाम का महत्व पता चले, तो फिर स्वाभाविक है हमारे अंदर वो रुचि बढ़ेगी कि चलो एक माला और कर लेता हूँ, दो माला और कर लेता हूँ। प्रभुपाद ने कितने स्थानों पर लिखा है महामंत्र का ही जप करना चाहिए। तो अगर आपके अंदर श्रवण और अध्ययन की रुचि है तो कोई तकलीफ नहीं, उसको करिए। समय बर्बाद करने से अच्छा उसको करिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब आप उसको बढ़ाएंगे कुछ समय में, आपके अंदर जप करने की भी रुचि बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम लोग श्रवण अध्ययन नहीं करते हैं और केवल जप करते हैं, तो क्योंकि हम लोग अभी उतने ऊंचे स्तर पर नहीं हैं, तो धीरे धीरे वो जप करने की रुचि भी समाप्त हो जाती है। इसलिए कोई गलती नहीं है, श्रवण होना चाहिए, और उसमें रुचि है तो अभी उसको ज़्यादा करिए, क्योंकि वो भी भक्ति का एक अंग है। प्रभुपाद समझाते हैं कि जो 9 अंग दिए गए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो श्रवण करना भी महत्वपूर्ण है, कीर्तन करना भी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कहते कोई भी एक विधि भी अगर अच्छी तरह की तो भी उद्धार हो सकता है। श्रवण के विषय में तो भागवत में इतना कहा गया है कि केवल श्रवण से, श्रण्वताम स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु विभद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम। तो श्रवण का तो बहुत महत्व, केवल एक ही नहीं कई श्लोकों में दिया है। तो इसीलिए भक्ति का अंग है, उसको हम ज्यादा करें अगर रुचि हमें आ रही है। लेकिन उस रुचि का लाभ ये होगा कि हमें जप में भी रुचि बढ़ जाएगी। ठीक है,
हाँ।
इतने सारे असुर आने के बाद भी माँ यशोदा ध्यान नहीं रखती थी, अलर्ट नहीं थी, ऐसा क्यों? क्या अलर्ट होती, वो लॉक करके रख देती कृष्ण को, लॉकडाउन, असुर आ रहे हैं अंदर रहे। भगवान के भक्त पूर्णतः भगवान पर आश्रित होते हैं, और हम देखते हैं कि जब कभी भी विपदाएं आईं तो यशोदा ने भी भगवान का आश्रय लिया। ये नहीं जानती थी कि यही भगवान है, उनकी रक्षा के लिए भी भगवान का आश्रय लेती थी। तो जो भगवान का आश्रय लेते हैं वो भगवान के भक्त पूर्णतया निर्भय होते हैं। जिसने भगवान का आश्रय ले लिया उसको कोई भय नहीं सताता फिर। तो ब्रजवासी इतने महान भक्त हैं, तो इसीलिए जिस तरह की विपदाएं भी आई उनको पता था कि आएंगी, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, ये भक्त का शरणागति का एक लक्षण है। तो इसलिए यशोदा मैया ने, और ऐसा नहीं है कि वो अलर्ट नहीं थी, क्योंकि जो ब्रज था, जो गोकुल जहां कृष्ण रह रहे थे, वहां के सारे लोग कृष्ण की रक्षा के लिए थे। तो एक दृष्टि से कहना चाहिए कि यशोदा ने तो पूरी आर्मी लगा रखी थी कृष्ण की रक्षा के लिए। आप कैसे कह सकते हैं अलर्ट नहीं थे? सारी गोपियां कृष्ण की रक्षा करना चाहती थी, गोप बाल कृष्ण की रक्षा करना चाहते थे, गायें कृष्ण की रक्षा करना चाहती थी, बछड़े कृष्ण की रक्षा करना चाहते थे। आगे चलकर एक कथा आती है कि जब कृष्ण गायों को चराने जाने वाले थे जिस दिन, तो गायों को पता चला कि कल से हमें चराने लेके जाएंगे, तो उस दिन सारी गायें खुद भागी उन स्थानों पर जहां पर उन्हें जाना था, और उन्होंने अपने खुरों से उस स्थान को बड़ा सॉफ्ट कर दिया। जितने पत्थर थे उसको तोड़ तोड़ कर मिट्टी बना दिया कि कल कृष्ण हमारे साथ आएंगे तो उनके पांव में नहीं लगे। इतनी सुरक्षा थी, 9 लाख गाय जाती थी कृष्ण की सुरक्षा के लिए, कृष्ण नहीं जाते थे गायों को लेकर। यही है ना, यशोदा मैया जब वन में भेजती थी तो 9 लाख गायों को भेजती थी, कितनी सिक्योरिटी एक आदमी के लिए बताइए। तो 9 लाख गाय जाती थी कृष्ण को प्रोटेक्ट करने के लिए, हजारों बालक जाते थे कृष्ण को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो लोग करते ही थे। वर्णन है कि जब बालक चलते थे, चलते चलते वो हमेशा कृष्ण को देखते थे, बीच में पेड़ आ जाता था तो अरे अरे कृष्ण कहाँ गए, मतलब कितना ध्यान रखते थे, कितनी टाइट सिक्योरिटी थी कृष्ण की कि वो ध्यान रखते थे कि पेड़ आ गया बीच में से कहीं चले नहीं जाए, तो वो उतना ध्यान रखते थे। तो यशोदा माता ने तो बहुत हैवी सिक्योरिटी लगा रखी थी, और फिर जितनी गोपियां थी वो ध्यान रखती थी कृष्ण का कहीं कुछ हो नहीं जाए, और उसके बाद भी असुर आ रहे हैं तो उनको विश्वास था कि कृष्ण या भगवान रक्षा करेंगे। तो क्योंकि ब्रज उस समय जितने भी भक्त थे वो सारे प्रेम करते थे, इसलिए लॉक रखने की जरूरत नहीं थी, प्रेमी भक्तों के बीच थे कृष्ण, तो कौन सी सुरक्षा वो चाहेंगे, इसलिए यशोदा ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और कोई प्रश्न बताएं। यस,
जन्म से पहले शिशु 9 महीने गर्भ में है तो उसमें आत्मा कब प्रवेश करती है?
जन्म से पहले शिशु 9 महीने तक माँ के गर्भ में होता है तो उसमें आत्मा कब प्रवेश करती है? पहले दिन, जिस दिन माता और पिता संग में आते हैं और माता गर्भ धारण करती है उसी दिन आत्मा प्रवेश करती है। ये वैज्ञानिकों का कहना झूठ है कि बालक को 2 महीने तक मारा जा सकता है, 3 महीने तक हो तो गर्भपात किया जा सकता है क्योंकि फिर उसमें अभी जान नहीं आई है, जान बाद में आएगी, ये उनका कहना है। पहले दिन बीज जब प्रकट होता है तभी आत्मा आती है, और इसका प्रमाण क्या है? बच्चा बड़ा कैसे होगा, शरीर बड़ा कैसे होता है अगर आत्मा नहीं है? जड़ पदार्थ अपने आप बड़ा नहीं हो सकता, ये जड़ पदार्थ है, 10 साल बाद भी इतना ही रहेगा, बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन वो बीज जो माँ के गर्भ में आता है वो 1-2 महीने में कितना बढ़कर आकार ले लेता है, अगर आत्मा नहीं है तो आकार कैसे लेगा? इसीलिए पहले दिन से ही आत्मा प्रवेश करती है, और इसीलिए गर्भपात चाहे पहले महीने में, दूसरे, चौथे, 9वें में, हर समय में बहुत घृणित अपराध है, पाप है। ठीक है, और कोई प्रश्न?
हाउ टू कंट्रोल माइंड बाय रिमेंबर कृष्ण और बाय डूइंग एनी अदर थिंग?
मन को कैसे वश में करें, कृष्ण का स्मरण करके या कोई और कार्य करके? कृष्ण का स्मरण करना बहुत अच्छा हथियार है मन को वश में करने का, लेकिन इस समय में कलयुग में संभव नहीं है। हम लोग सतत बैठ नहीं सकते और कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना है, हमारा मन बड़ा दूषित है। इसीलिए हमें मन को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए? पहली चीज मंत्र का उच्चारण, मनः त्रायते इति मंत्र, मंत्र का उच्चारण निश्चित होना चाहिए, ये जरूर करना है मन को। दूसरा, सेवा में लगना चाहिए। हम केवल जप करते करते, हरिदास ठाकुर तो है नहीं कि बैठे रहें जप करते रहें बड़ा आनंद आए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एडवर्टाइजमेंट भी दिया था कि अगर कोई भी आए बस दिन भर जप करे, हम उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, कोई नहीं आया, जप करना संभव नहीं। लेकिन मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, सेवाएं होनी चाहिए और नम्र भाव में वैष्णवों की सेवा जरूर करिए। अगर मन को नियंत्रण करना है, वैष्णवों की सेवा होनी चाहिए, तब जाकर मन नियंत्रण होगा। तो मंत्र का जाप हो, शास्त्र का अध्ययन हो, सेवा हो और वैष्णव सेवा विशेष करके बड़े नम्र भाव में करें, तब हम मन को नियंत्रण कर सकते हैं। और वैसे मन को नियंत्रण करने के और भी कई तरीके हैं कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन भक्ति में यही प्रमुख तरीके हैं।
कीर्तन में मन लगता है पर रीडिंग में उतना नहीं।
कीर्तन में मन लगता है पर रीडिंग में उतना नहीं लगता, क्योंकि अभी हम मनोरंजन के स्तर पर हैं, कृष्ण रंजन में नहीं पहुंचे हैं। तो हमें कीर्तन अच्छा लगता है इसलिए हम कीर्तन करते हैं, ये भक्ति का सिद्धांत नहीं है। भक्ति का सिद्धांत यह है जो आचार्यों ने हमें दिया वो हम करें। केवल हमें अच्छा लगता है इसलिए करते हैं तो वो फिर भक्ति नहीं है। क्यों? जैसे हम मंदिर आते हैं, क्यों हमें अच्छा लगता है? कल को अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ देंगे। हम प्रचार करते हैं, प्रवचन देते हैं, हाँ क्यों? हमें अच्छा लगता है। कल को हमें कहा जाए प्रवचन मत दो तो हम संस्था छोड़ देंगे। अरे ये सब पॉलिटिक्स होता है, राजनीति होती है यहां पर। तो इसीलिए हमें उस मार्ग पर चलना है जो आचार्य गण बताते हैं। और आचार्य गण क्या बताते हैं हमें? वो बताते हैं जो मार्ग हमें दिया उसको। तो इसीलिए हमें सारी चीजों को करना चाहिए। लेकिन हाँ, स्वाभाविक है किसी एक चीज में हमारी रुचि होगी उसको बड़े ध्यान से करना चाहिए। जैसे अभी हम प्रश्न के उत्तर में बता रहे थे कि गिरिराज प्रभु ने पूछा तो हमने कहा श्रवण में रुचि है तो उसको बढ़ाना है, क्योंकि उससे फिर जप में भी रुचि आएगी। तो अगर इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हमें कीर्तन अच्छा लगता है तो हम कीर्तन छोड़ दें, नहीं नहीं ये हमारा मनोरंजन है हम नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये है कि हम कीर्तन तो करें अच्छी तरह, लेकिन साथ साथ अन्य क्रियाओं को भी करें। हम जप को त्याग नहीं दें, हम अध्ययन को त्याग नहीं दें, श्रवण को त्याग नहीं दें, सेवा को त्याग नहीं दें। हाँ, लेकिन रुचि है तो उसमें करें, कोई उसमें गलती नहीं है। मगर केवल उसी को करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, ये केवल मनोरंजन है। तो दो चीजें हैं, हमें कीर्तन अच्छा लगता है तो हम केवल कीर्तन करेंगे। हमसे कहा जाए कि प्रभु जी आपको झाड़ू लगानी है, बोले वो सब मेरा काम नहीं है। प्रभु जी जरा आइए ड्यूटी में हेल्प, वो सब मेरा काम नहीं है। प्रभु जी थोड़ा सा कुकिंग कर, वो सब मेरा काम नहीं है। कीर्तन यस, चार घंटे बोलो करने के लिए तैयार हूं। क्यों? ये भी तो भक्ति है। महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ड्यूटी वर्षी वे सब, संकीर्तन से सब कुछ होता है। तो संकीर्तन से सब कुछ होता तो प्रभुपाद ने डीटी वर्शिप क्यों दिया? संकीर्तन से सब कुछ हो सकता तो प्रभुपाद ने सेवाएं क्यों दी? हमको केवल बोलते कि बस सुबह उठो, कोई जप करने की जरूरत नहीं, कोई मंगल आरती नहीं, कोई सेवा नहीं, मृदंग करताल लो, बाहर दिन भर घूमो, फिर 12 बजे रात को वापस आना, सो जाओ और फिर जाओ सुबह। प्रभुपाद ने नहीं दिया। तो इसीलिए हमें, तो हम ये जो बता रहे हैं कि एक तरफ हमें एक एक्सट्रीम में जाते हैं कि बस मैं केवल संकीर्तन करूंगा, कीर्तन करूंगा, बस कोई सेवा नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी ओर हम ये एक्सट्रीम में चले जाएं कि मैं, मुझे अच्छा लगता है लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा कीर्तन, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, प्रभु जी ने कहा कि ये मनोरंजन है। हाँ, तो कोई कहेगा प्रभु जरा कीर्तन करना, बिल्कुल नहीं, हाथ नहीं लगाऊंगा कीर्तन को। क्यों? प्रभु जी ने कहा मनोरंजन है। तो दोनों एक्सट्रीम नहीं जाना है। तो हमारे कहने का आशय ये है कि अगर हमें मन कीर्तन अच्छा लगता है कोई बात नहीं, उसमें करना चाहिए, लेकिन साथ साथ अन्य सेवाओं को भी करते रहना चाहिए, उनमें भी रुचि बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आचार्यों के द्वारा दिया गया ये मार्ग है। यस, और कोई प्रश्न?
कृष्ण जब भी कोई लीला करते हैं तो देवताओं को पता होता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोवर्धन लीला के समय और ब्रह्म विमोहन लीला के समय इंद्र और ब्रह्मा भूल गए थे, ऐसा कृष्ण क्या करते हैं?
कृष्ण जब लीलाएं करते हैं देवताओं को पता होता है, लेकिन कभी कभी जैसे ब्रह्म विमोहन लीला, गोवर्धन लीला में देखते हैं कि उनको नहीं पता था, तो कैसे भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भागवत का पहला श्लोक अगर हम पढ़ें तो उसमें क्या कहा गया है? मुह्यन्ति यत् सूरयः। भगवान के बारे में वर्णन है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वो क्या करते हैं? मुह्यन्ति यत् सूरयः, देवताओं तक को मोहित कर देते हैं। ये तो भागवत का पहला श्लोक है और फिर भागवत प्रारंभ हो रही है। तो फिर भगवान कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं कि उनको बड़े बड़े देवता भी समझ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अहम आदिर ही देवानाम मनुष्याणाम च सहस्र, जो भी है जिनका भी जो देवता है उनका मैं आदि हूं, तो जब मैं आदि हूं तो वो मुझे कैसे समझ सकते हैं? हां, उनको केवल इतना पता होता है कि कृष्ण आ रहे हैं, क्या लीला करेंगे क्या करेंगे वो उनको नहीं पता है, वो तो आनंद लेते हैं उन लीलाओं का भी देवता। तो इसीलिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसी से ये पता चलता है। देवता तक मोहित हो जाते हैं मतलब कृष्ण के वो अधीन है, कृष्ण की शक्ति के अधीन आ सकते हैं, लेकिन कृष्ण कभी अपनी शक्ति के अधीन नहीं आते, इसीलिए वो भगवान है। और कोई प्रश्न है यहाँ पे किसी का? यस, दुखी जब हम लोग ने यहाँ भक्तों की बात की तो ऑफकोर्स भौतिक प्रगति की बात नहीं थी, लेकिन हाँ भौतिक प्रगति भी देखकर हमें किसी के प्रसन्न होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। भले हम लोग भक्त हैं तो ऐसा नहीं, मान लीजिए अचानक कोई व्यक्ति अच्छा हो जाए, उसको बहुत धन आ जाए, बड़ा प्रसिद्ध हो जाए, तो हमें ये सब माया है, ये सब बेकार है। नहीं, अच्छा है, भगवान की कृपा है, हम उसको भगवान की कृपा देखते हैं। भौतिक ऐश्वर्य भी किसी को मिल रहा है तो भगवान की कृपा है। तो जब हम उस व्यक्ति को समझाने जाएं कि भाई ये हो रहा है, तुम बहुत ज़्यादा उसमें कर रहे हो, तो वो नहीं मानता है, तो इसमें क्या कारण हो सकते हैं? एक कारण जैसे आपने बताया कि हो सकता हो कि आप अच्छे भाव से उसको नहीं समझा रहे हैं, आपके मन में थोड़ा सा द्वेष है, इसको इतना मिल गया मुझे नहीं मिला, तो आप उसके एक मित्र के भाव में उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हृदय में ये है कि द्वेष भरा, तो वो सुनेगा नहीं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है जरूरी कि आपके हृदय में द्वेष है, आपने उसको समझाया लेकिन वो अभी तैयार नहीं है, या आपने उसको जिस बात को समझाया जिस तरीके से समझाया वो गलत हो सकता है। हर व्यक्ति को समझाने का तरीका अलग होता है, हर एक को हम डंडा लेकर नहीं समझा सकते, है ना? जैसे पशु को डंडे से कंट्रोल कर सकते हैं, मनुष्य को नहीं किया जाता। हर एक व्यक्ति को हम डंडा लेकर समझाएं तो वो बातें नहीं समझेंगे, कुछ समझ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको डंडा मारे तभी बाहर नहीं निकलेंगे, पुलिस वाले मार रहे हैं ना आजकल, तो वो लोग उसी से समझते हैं, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। तो हमने समझाया नहीं होगा सही तरीके से, या फिर प्रमुख बात उस समय पर हमें ये करना है कि हमें अपना कर्तव्य करके छोड़ देना, वो व्यक्ति समझे या ना समझे वो उसके और कृष्ण के बीच की बात है, लेकिन हमारा कर्तव्य हमें किस भाव में करना है ये महत्वपूर्ण है। आप किस भाव में उसको समझा रहे हैं, पहली चीज, अगर आपको अधिकार है तब समझाना चाहिए। अधिकार मतलब या तो आपका अच्छा संबंध है या आपके वो अधीन है, या आप काउंसलर हो या जो भी है, जो भी चीजें, पहली चीज हमें अधिकार है कि नहीं ये देखना है। बिना अधिकार के समझाने जाएंगे व्यक्ति कभी नहीं समझेगा। आपको अधिकार दिया गया है कि हाँ आपका कर्तव्य इन लोगों को संभालना, तब आप कर रहे हो, समझा रहे हो, दोष दिखा रहे हो कि देखो तुम्हारी ये गलती है, तो व्यक्ति बड़े प्रेम से स्वीकार करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप आए ही इसीलिए हैं कि आपके द्वारा मेरा जीवन ठीक हो जाए। लेकिन आपको अधिकार नहीं है और आप जाके समझाओगे, उस व्यक्ति सुन भी लेगा, उसके मन में आएगा जैसे कहते हैं भाई तुम हो कौन मुझे समझाने वाले, राइट? तो पहला चीज, हमारा अधिकार है कि नहीं। दूसरा चीज, क्या हम इस भाव से समझा रहे हैं कि इसके द्वारा उसकी प्रगति हो, हमारा भाव सही है कि नहीं? हम इसलिए नहीं समझा रहे कि मैं कह रहा हूं इसलिए होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है अधिकारियों के साथ भी कि भाई हम अधिकारी हैं, हमने कहा ए ये करो, उसने नहीं किया, बस ये पापी आदमी है, दुराचारी है, ये क्यों, इसने जो मैंने कहा वो नहीं किया, ये भाव सही नहीं है। हम उनकी गलतियां इसलिए बताते हैं ताकि हमें चिंता है उनके आगे बढ़ने की, इस भाव में गलती बता रहे हैं कि नहीं, ये देखना चाहिए। अपने हृदय में देखिए, प्रभाव उस पर तब होगा, नहीं तो उस पर प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आपके हृदय का भाव सही नहीं है, वो आपको, वो कैसे आप उसको प्रभावित करोगे। प्रभुपाद ने इतने सारे लोगों को प्रभावित कैसे कर दिया, वही बात बताकर जो हम लोग वर्षों से दोहराते आ रहे हैं अब उनके बाद, प्रभुपाद के बाद, लेकिन किसी का हृदय परिवर्तन नहीं होता। कारण क्या था? प्रभुपाद का भाव सही था, करुणा से भरा भाव था। वो जब किसी को कहते थे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, लोग समर्पण कर देते थे। हम लोग जब कहते तुम शरीर नहीं आत्मा हो, लोग कहते बहुत बार सुना है, कुछ और सुनाइए। ये उनका हृदय था। तो क्योंकि उनके हृदय में कोई गलत भावना नहीं थी, वो केवल जीव का उद्धार करना चाहते थे, तो इस शुद्ध हृदय से उन्होंने कहा, लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया, लोगों ने जीवन समर्पण कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये। आज आप बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको जहां वो जा रहे हैं लोग धड़ाधन समर्पण कर रहे हैं, जिस जगह चले गए लोग समर्पण कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए किसी से मिले जीवन समर्पित कर दिया उसे। ये प्रभुपाद ने करके दिखाया, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध था। तो उनका क्या था, वो ये सोचते थे कि मैं इस, प्रभुपाद भी डांटते थे, ऐसा नहीं प्रभुपाद दोष नहीं दिखाते थे कि प्रभुपाद अदोषदर्शी हैं, किसी का दोष देखा ही नहीं उन्होंने, बहुत डांटते थे प्रभुपाद। हाँ, घबराते थे लोग रूम में जाने के लिए प्रभुपाद के, लेकिन हृदय में प्रेम भरा हुआ था, इसीलिए डांट खा कर भी वो लोग उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। तो ये महत्वपूर्ण है कि अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो, आपके हृदय में सही में ये भाव है। जैसे प्रभुपाद के पिता प्रभुपाद को डांटा करते थे, लेकिन डांटने से पहले क्षमा मांगते थे उनसे। आप सोच सकते हो ऐसा पिता, प्रभुपाद के पिता उनको कहते थे कि देखो मुझे डांटना तो नहीं चाहिए, लेकिन डांट रहा हूं, नहीं डांटूंगा तो तुम बिगड़ जाओगे, और फिर डांटते थे, क्षमा मांगकर डांटना। ये कहां कहां देखा है, ये वैष्णवता है। तो अगर हमारा ऐसा भाव है तो सामने वाले का हृदय पिघलेगा ही, बदलेगा ही। तो पहली चीज, अधिकार है या नहीं है, हमारा संबंध कैसा है, और हमें, हम किस भाव में कह रहे हैं, और कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, आप किस समय कह रहे हो। आप 4 मित्र बैठे हैं, 5 मित्र, उनके बीच में आपने उसको बोल दिया, ए तुम ऐसे आदमी हो, ये करते हो, वो बेचारा कभी आपसे आगे बात नहीं करेगा। वही चीज आप उसको अलग से बुलाकर कहे कि देखो मैं ऐसा देख रहा हूं और ये है, तो वो बहुत प्रेम से स्वीकार करेगा। तो ये भी होता है, कभी कभी हम लोगों को आदत होती है 10 लोगों के सामने डांट देते हैं, तो फिर वो स्वीकार नहीं करता उसको। तो काल भी देखना जरूरी है, स्थिति देखना जरूरी है, भाव देखना जरूरी है, अधिकार देखना जरूरी है, तब हम कुछ कह सकते हैं, हृदय परिवर्तन होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गोड प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।